तो आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मतगण, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण के प्रति अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही है। जब उद्धव जी गए थे ब्रज में, ब्रजवासियों को और विशेष रूप से गोपियों को सांत्वना प्रदान करने के लिए, और उद्धव जी ने विशेष रूप से गोपियों को ध्यान लगाने के लिए कहा था, तो श्रीमती राधारानी इसलिए कह रहे हैं कि नहे गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार ध्यान करी पाइबे संतोष। तो ये गोपिया ये योगेश्वर नहीं है, जैसे योगेश्वर होते हैं अर्थात योगीजन होते हैं, ये लोग ध्यान में संतोष लाभ करते हैं। उनका वस्तुतः सारा साधन ध्यान में परिवेशित होता है, ये आसन प्राणायाम आदि करके अपनी इंद्रियों को प्रत्याहार करते हैं और ध्यान करते हैं। तो उसमें वो समाधिस्थ हो जाते हैं ध्यान में। तो उद्धव जी ने गोपियों से कहा था कि आप भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, उसमें आप जो विरह का दुख अनुभव कर रही हैं, तो इससे भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से कम आप लोगों का ये दुख लाघव हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो श्रीमती राधारानी कह रही है कि ये गोपियां योगेश्वर नहीं है, अपने उद्धव के हाथ ये संदेश भेजा है ध्यान करने के लिए, तो गोपियां योगेश्वर नहीं है या आपके चरण कमलों का ध्यान करके वो संतोष प्राप्त नहीं कर सकती। तुमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटीनाटी सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोस, और आपके आपकी जो बाक आपका जो बाक चातुर्य है अर्थात भगवान कृष्ण का ये कि गुण माना गया है, कहने में बहुत पटु हैं, दक्ष हैं, इस प्रकार बात बना करके कहते हैं कि कोई उनकी बातों को काट नहीं सकता। तो ये बाकपटु है, भगवान कृष्ण का एक गुण है। तो श्रीमती राधारानी कह रहे हैं कि आपकी जो बाकपटुता है, और तार मध्य कुटीनाटे, क्योंकि भगवान कृष्ण कभी सीधे बात नहीं करते, और एक वाक्य बोलने से उसमें कई अर्थ हो सकते हैं। तो भगवान कृष्ण जब इस प्रकार बातें करते हैं गोपियों के साथ, तो गोपियों में कभी कभी रोष में वृद्धि होती है, क्रोध में वृद्धि होती है, गोपियां कभी कभी मिथ्या क्रोध करती हैं कृष्ण के ऊपर। तो श्रीमती राधारानी कह रही है कि सुनी गोपीर आरो बाढ़े रोष, आपके वाक चातुर्य वाक पटुता को सुनकर गोपियों का रोष या क्रोध बढ़ जाता है, और भगवान कृष्ण इसी में आनंद प्राप्त करते हैं गोपियों को चिढ़ाने में। कि वो उन पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं, उसमें वो आनंद प्राप्त करता है। तो श्रीमती राधारानी कह रहे हैं, देह स्मृति नहीं जार, संसार कूप कहां था है ते नाचा है उद्धार, विरह समुद्र जले कामति मिंगले किले, गोपीगणे नेहतार पार। तो श्रीमती राधारानी कह रही है कि जिन लोगों की देह स्मृति नहीं है, कारण भौतिक संसार में साधारण तो लोगों की देह स्मृति है, अर्थात हर व्यक्ति सोचता है कि वो शरीर है, हम सोचते हैं कि हम यह शरीर है, हम भूल जाते हैं कि हम दिव्य आत्मा है। तो भगवत गीता का उपदेश यहीं से शुरू होता है, भगवान कृष्ण प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का उपदेश कि हम यह शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है, और आत्मा भगवान का नित्य अंश विशेष है। क्योंकि इस भौतिक संसार में लोगों की यह देह धारणा है, वो अपने को शरीर समझते हैं, शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। तो शरीर को सुख देने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है, और शारीरिक सुख को ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद मानता है। किंतु श्रीमती राधारानी कह रही है कि यद्यपि गोपियों का व्यवहार भगवान कृष्ण के साथ इस प्रकार है जैसे गोपियां देह सुख की कामना कर रही है ऐसा लगता है, किंतु वस्तुतः गोपियां देह सुख से परे है, उसके ऊर्ध्व में, उनकी कोई देह सुख की कामना नहीं थी। इसलिए गोपियों का जो प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति है वो शुद्ध प्रेम कहा गया है। भौतिक संसार में जिसको प्रेम कहा जाता है वस्तु तो वो प्रेम नहीं है, वो काम है। आत्मेंद्रिय प्रतिवंश तारे बोले काम, भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है, चाहे पिता माता का बच्चों के साथ संबंध हो, भाई बहनों का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, जो भी बंधु बंधु का संबंध हो, हर संबंध में हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ निहित है। हर व्यक्ति दूसरों के द्वारा स्वयं आनंद प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वस्तुतः भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, ये काम है, जहां अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए व्यक्ति कार्य करता है या बंधुत्व स्थापन करता है या संपर्क स्थापन करता है। एकमात्र भगवान कृष्ण और उनके जो भक्त जन है उनमें जो प्रेम की भावना है वो दिव्य है, क्योंकि ये आत्मेंद्रिय प्रतिवंशा से परे है। कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंश धरे प्रेम नाम, भगवान कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए भक्तजन जो कार्य करते हैं, जो सेवा करते हैं, वह वस्तुतः प्रेम है, उसमें आत्मा सुख की कोई कामना नहीं है, केवल भगवान कृष्ण को सुख देना है, यही भक्त की एकमात्र कामना है। और भगवान कृष्ण के भक्तों में गोपियों का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोपियों ने जो कुछ भी किया है भगवान कृष्ण के लिए, यद्यपि गोपियां शरीर को सजाती भी है, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि गोपियां अपने शरीर को सजा रही है अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए, नहीं, गोपियां अपने शरीर को सजाती हैं कृष्ण के लिए, कि कृष्ण जब गोपियों के रूप का दर्शन करेंगे वो प्रसन्न होंगे। यही गोपियों का उद्देश्य है शरीर को सजाना, अन्यथा कोई उद्देश्य नहीं है, एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करना। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियों ने बहुत बड़ा त्याग स्वीकार किया था, जो त्याग साधारण रूप से कोई स्त्री नहीं कर सकती या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि सभी अपने घर, अपने परिवार, अपने धन संपत्ति, आत्मीय स्वजन उनके प्रति आसक्त है भौतिक संसार, और इनका त्याग करना ये बहुत कठिन है। इसको दुस्तेज्य कहा गया है, स्त्री संतान धन संपत्ति घर परिवार आत्मीय स्वजन इनको त्याग करना बहुत कठिन है, दुस्तेज्य। किंतु गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, यहां तक कि उनका आत्मसम्मान भी उसके संबंध में उन लोगों ने सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, उन्होंने कभी सोचा नहीं। लोग चाहे जो कुछ भी कहें, कृष्ण के लिए गोपियां अपने प्राण तक देने के लिए प्रस्तुत थे। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ता है गोपियों के सामने, न पा रहे हम निरवध्य संयोजा स्वसाधु कृत्यंग विबुधायुषा पिव, कि हे गोपीगण, मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता। स्वयं भगवान जो संसार के स्वामी है, वे कह रहे हैं कि मैं गोपियों के ऋण को चुका नहीं सकता। तो कोई कह सकता है, ठीक है आप अभी चुका नहीं सकते, बाद में चुका सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, विबुधा आयुषा आप विवाह, यदि मैं प्रयत्न भी करूं तुम्हारे ऋण को चुकाने के लिए, तुम लोगों ने जो त्याग किया है मेरे लिए, त्याग स्वीकार किया है, इस ऋण को मैं चुका नहीं सकता। और यदि प्रयास भी करूं, कब तक न विबुध आयुषा आप विवाह, विबुध अर्थात देवतागण, देवताओं की आयु बहुत अधिक होती है, इसलिए उनको अमर भी कहा जाता है। तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की आयु बहुत अधिक है। ब्रह्मा जी के एक दिन उसमें 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और एक मनु का जो शासन काल होता है वो 71 दिव्य युग होता है। दिव्य युग का अर्थ है कि हमारे जो चार युग हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चार युगों के समय को मिला देने से एक दिव्य युग होता है। तो कली का समय क्या है, 4,32,000 वर्ष कलयुग का समय है। द्वापर युग का समय इसका 2 गुना, त्रेता युग का समय कलयुग के 3 गुना, और सत्ययुग का समय कलयुग के 4 गुना। ये चार युग मिलने से 43,20,000 वर्ष करीब होता है। तो ये एक दिव्य युग कहा जाता है, और एक मनु का शासन काल 71 दिव्य युग है, अर्थात 43,20,000 वर्ष को 71 में गुनिए, जितने वर्ष हुए 1000 कितना होता है, जो भी हो, तो ये एक मनु का शासन काल है। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, अर्थात 1000 दिव्य युग व्यतीत होता है ब्रह्मा के एक दिन का समय, अर्थात 12 घंटे का समय। ब्रह्मा जी के 12 घंटे हमारे यहाँ 1000 दिव्ययुग का समय है, 1000 को 43,20,000 वर्ष में गुने जितने वर्ष हुए, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे का समय है, और ब्रह्मा जी की रात भी और 12 घंटे है और 1000 दिव्ययुग, इसलिए ब्रह्मा जी के 24 घंटे दिन और रात ये 2000 दिव्ययुग हुए। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के 30 दिनों में एक महीना और 12 महीने में एक वर्ष, और इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते, करोड़ों वर्ष। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मैं प्रयास भी करूं करोड़ों वर्ष तक, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु के अंत तक, फिर भी है गोपियां मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता। और कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया है कि मैं ऋणी बन गया तुम लोगों का। जो दुर्जर गेह श्रृंखला समृष्य, कि तुम लोगों ने जो गृह श्रृंखला है, गृह बंधन है, परिवार का जो बंधन है, तुम लोगों ने उस बंधन को छिन्न कर दिया है, तोड़ दिया है। और किसके लिए तोड़ दिया है? मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। तुम लोगों ने जो दुस्तेज गृह श्रृंखला है, दुर्जर गृह श्रृंखला, उसको तुम लोगों ने तोड़ दिया है। इसलिए है देवियों, तुम्हारा ये जो बलिदान है, त्याग है, ये त्याग ही तुम्हारे इस ऋण का ये हो सकता है, ये ऋण का प्रतिदान हो सकता है। तुम्हारा जो त्याग है तुम्हारे इस ऋण का प्रतिदान है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि गोपियों के प्रति वो कितने ऋणी हैं, जिन लोगों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। इसलिए गोपियां भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी गई। तो यहां पर श्रीमती राधारानी जो गोपियों में मुख्य है, हमें ये जानना आवश्यक है कि श्रीमती राधारानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण के शरीर से निकली है और गोपियां श्रीमती राधारानी के शरीर से, जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं, ये सब गोलोक वृंदावन से ही आई थी भगवान कृष्ण के साथ। ये संसार की कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। इसलिए प्रेम का जो सर्वोच्च निदर्शन है उनके व्यवहार में दृष्टिगत होता है, गोपियों के प्रेम में। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है, इसमें काम का कोई गंध नहीं है। जैसे भौतिक जगत में हर वस्तु काम के आसपास मंडराती है, किंतु भगवान कृष्ण के प्रेम में काम का कोई गंध नहीं है, केवल दिव्य प्रेम ही है। तो यहां पर श्रीमती राधारानी कहते हैं, देह स्मृति नहीं जार, संसार कूप कहां तार। जिसकी देह स्मृति नहीं है, देह धारणा नहीं है, तो वो संसार बंधन में नहीं है। संसार बंधन में वही लोग हैं जिनकी देह स्मृति, देह धारणा है। इसलिए कहा जाता है कि संसार के अंधकूप में वो गिरे हुए हैं, जिस अंधकूप से निकलना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, कष्ट साध्य है। अंधकूप आप जानते होंगे कि कुआं तो जानते हैं जिसमें जल होता है, अंधकूप उसको कहा जाता है जिसमें जल नहीं होता है। कुआं एक दिन था, जल था, जल शुष्क हो गया, और जब कुएं में पानी नहीं होगा तो कोई आता नहीं वहां, उसको व्यवहार करता नहीं क्योंकि पानी नहीं है। और उस बाद में क्या होता है, जब कुप का व्यवहार नहीं होता है तो कुप के आसपास जो घास है वो धीरे धीरे बढ़ के कुप के कुएं को आच्छादित कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि अंदर कुआं है, ऊपर घास ही दिखाई पड़ता है। और कोई अनजान व्यक्ति उधर आ जाए और कुएं के ऊपर चरण रखे घास समझ करके, वो नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के पश्चात वहां पानी नहीं है, सूखा है नीचे, और वो उठ नहीं सकता, और वो पुकारेगा भी किसी को उद्धार करने के लिए, कोई सुनेगा भी नहीं। तो ये अंधकूप कहा गया है, और इस संसार को अंधकूप के साथ इसकी तुलना की गई है। तो इस संसार जो है अंधकूप के समान, यहां व्यक्ति तड़पता रहता है, कष्ट भोग करता रहता है, और संसार में इतना कष्ट भोग करता है कि किसी को बोल भी नहीं सकता, ये कष्ट है। उद्धार होने की बात तो दूर, किसको बोलेगा तो कोई दूसरा उपाय बताएगा, किंतु व्यक्ति किसी को बोलने के लिए भी कुंठित होता है, अपनी बात घर की बात वो दूसरों को बोल नहीं सकता, जो कष्ट भोग कर रहा है घर पर वो दूसरों को बोल नहीं सकता, और घर पर रह भी नहीं सकता, उससे उद्धार नहीं हो सकता और रह भी नहीं सकता। इस प्रकार की स्थिति है, अंधकूप जैसी स्थिति है। अंधकूप में पड़ा हुआ व्यक्ति, वहां से उसका उद्धार नहीं हो सकता, और पुकारने पर भी कोई आता नहीं उसको उद्धार करने के। तो इस प्रकार की ये गृह अंधकूप इसलिए कहा गया है, गृह जो है संसार है अंधकूप के समान। तो श्रीमती राधारण कहते हैं कि संसार कूप कहां तार, तो ये अंधकूप में वही व्यक्ति गिरता है जिसमें शरीर चेतना होती है, देह चेतना होती है, जो शारीरिक सुख चाहता है, आहार निद्रा भय मैथुन में, वही व्यक्ति संसार अंधकूप में गिरता है और उससे उद्धार होने का कोई उपाय प्राप्त नहीं होता। कि व्यक्ति यद्यपि संसार में कष्ट भोग कर रहा है किंतु किसी को बोल नहीं पाता है, किंतु कोई आत्मीय स्वजन या परिचित व्यक्ति मिल जाता है, पूछ देता है आप कैसे हैं, तो व्यक्ति क्या बोलता है कि आई एम फाइन, हूं बहुत अच्छा है, सब ठीक है, किंतु कुछ ठीक नहीं है। व्यक्ति दुख में है फिर भी बोल नहीं पाता है, बोलता है हम ठीक है। यही संसार में पड़े हुए व्यक्तियों की अवस्था है। किंतु श्रीमती राधारण कह रही है कि संसार बंधन उसको नहीं है जिसकी शरीर चेतना नहीं, ताहा है ते नाचा है उद्धार। इसलिए श्रीमती राधारणी कहती है कि मैं संसार अंधकूप से हम उद्धार होना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा शरीर धारणा नहीं है, हमारी शरीर धारणा नहीं है, इसलिए संसार अंधकूप से उद्धार होने का कोई प्रयास भी हमें करने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ क्या है कि हम कृष्ण चेतना में है, शरीर चेतना में नहीं है, उसके विपरीत हम कृष्ण चेतना में है, अर्थात कृष्ण के पास हमारा मन सदा सर्वदा लगा रहता है, हम कृष्ण के संबंध में सोचते रहते हैं, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, ये सब सदा सर्वदा हमारे मन में ये प्रतिफलित होती है, हम स्मरण करती रहती है। इसलिए संसार बंधन से मुक्त होने की हमारी कोई कामना नहीं है। यदि युग युगों तक हम भगवान कृष्ण का इस प्रकार स्मरण करते रहे तो हम इस संसार में रहना चाहते, उद्धार होना नहीं चाहते। अर्थात व्यक्ति यदि कृष्ण चेतना में है तो वो कहीं भी हो, संसार में हो या संसार के बाहर हो, उसके लिए एक ही जैसा है। जैसे नारद मुनि भ्रमण करते हैं, वो कभी कभी नर्क लोक में भी जाते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, नर्क लोक में भी जाते हैं। कि नारद मुनि जब नर्क लोक में जाते हैं तो नर्क का कष्ट नहीं भोग करते, वहां भी जाकर कृष्ण चेतना का ही प्रचार करते हैं, भगवान की वाणी का ही प्रचार करते हैं और नर्क में पड़े हुए लोगों का उद्धार करते हैं। तो जो कृष्ण चेतना में है वो कहीं भी जाए वो निर्लिप्त रहेगा, वो प्रभावित नहीं होगा। विरह समुद्र जले कामांति मिंगले गिले गोपी गणे नेहतार पार। तो श्रीमद राधारण कह रही है कि संसार में यद्यपि संसार से उद्धार होने की हमारी कोई कामना नहीं है, किंतु इस संसार में आपके विरह में हम लोग ग्रसित हो रहे हैं। आपके विरह से हम काम तिमिंगल, तिमिंगल जो तिमी जो मछली है समुद्र में है, मछली देखी जाती है, उससे भी बड़ा है तिमिंगल। तिमिंगल इतना बड़ा है कि बड़ी बड़ी तिमी मछलियों को भी खा जाता है, कभी कभी बड़े बड़े जहाजों को भी निगल लेता है समुद्र में, उसको तिमिंगल कहा गया है। और कोई जहाज समुद्र में जा रहा है और तिमिंगल के सामने पड़ गया तो उससे बचना बहुत कष्टसाध्य कठिन है। तो श्रीमती राधारण कह रही है कि आपके विरह में जो विरह ताप हम अनुभव कर रही है, कृष्ण से कह रही है, ये तिमिंगल के समान है, ये काम तिमिंगल हमें निगल रहा है, उससे बचना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो कृष्ण से प्रार्थना करती है श्रीमती राधारानी कि गोपी गाने नेहतार पार। तो ये जो विरह सागर है, आपके विरह में जो सागर की सृष्टि हुई है जिसको पार करना बहुत कठिन है, और उसमें भी तिमिंगल है सागर में। एक तो व्यक्ति सागर को पार होने के लिए जहाज का आश्रय लेता है, किंतु उसमें और बहुत सारी बाधाएं भी है, तिमिंगल जैसी बाधाएं हैं। तो श्रीमती राधारानी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप यदि कृपा प्रदर्शन करेंगे, आपकी कृपा से ही हम इस विरह सागर को पार कर जाएंगे, आप कृपा करके हम इस विरह सागर के उस पार हमें ले जाइए, अर्थात आपका दर्शन देकर आप हमें इस विरह ताप से उद्धार कीजिए। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन बन सी कुंजे रासादि कलीला। तो राधारानी स्मरण कर रही है कृष्ण की लीलाओं का कि वृंदावन में, गोवर्धन में और यमुना के तट पर जो वन प्रदेश है, वहां पर भगवान कृष्ण ने रास आदि कई लीलाएं की गोपियों के साथ। और ये रासलीला क्या है कि रासलीला नृत्य और गीत की लीला है। गोपियां भगवान कृष्ण के साथ गीत गा रही थी और उसके साथ साथ नृत्य कर रही थी गोलाकार वृत्ताकार में, उसको रासलीला कहते हैं। भगवान कृष्ण के साथ गाना और नृत्य करना ये परम आनंद का विषय है। यदि किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि भगवान कृष्ण के साथ गाना है और नृत्य करना है, और भगवान कृष्ण गोपियों को ये सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे, तो हर गोपी के पास एक एक कृष्ण थे। कृष्ण ने अपने को विस्तार किया था, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तो हर गोपी सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ है, और इस प्रकार गोपियां कृष्ण के साथ गान कर रही थी और नृत्य भी कर रही थी। तो भगवान कृष्ण की ये रास लीलाएं कई स्थानों पर हुई है ब्रजभूमि में, वृंदावन में, गोवर्धन में, यमुना के तट पर। तो वृंदावन में भगवान कृष्ण की जो रास लीलाएं हुई है उसमें हर तरह की गोपियां उपस्थित थी, इसलिए वृंदावन के रास को पंचायती रास कहते हैं, क्योंकि उसमें हर तरह की गोपियां उपस्थित थी उस रास लीला में। किंतु गोवर्धन में भगवान कृष्ण की जो रास लीलाएं हुई थी उसमें गोवर्धन में रास मंडल है, एक तो चंद्र सरोवर पर है और एक पुंछरी के पास है रासस्थली, ऐसे कई स्थानों पर है। तो वहां पर भगवान कृष्ण ने अपने अंतरंग गोपियों के साथ रास लीलाएं की थी गोवर्धन में। तो श्रीमती राधारानी इन स्थानों में जो रास लीलाएं हुई थी उनका स्मरण कर रही है। से ब्रजेर जनगण माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र केमने पासरिला। और उसके साथ साथ श्रीमती राधारानी कृष्ण से कह रही है, कृष्ण मथुरा में है, पास में नहीं है, किंतु उद्धव जी आए हैं कृष्ण के दूत बनकर उनको योग उपदेश देने के लिए। तो उद्धव के सामने श्रीमती राधारानी ये प्रलाप कर रही है, जैसे उद्धव सुनेंगे और भगवान कृष्ण को जाकर कहेंगे, राधारानी के मनोभाव को व्यक्त करेंगे। वस्तुतः जब उद्धव जी से श्रीमती राधारानी इस प्रकार कृष्ण को लक्ष्य करके कह रही थी उद्धव जी के सामने, तो उस समय एक भ्रमर आकर श्रीमती राधारानी के चरणों पर बैठ गया था और राधारानी को स्मरण हो आया, ये भ्रमर काला है और कृष्ण भी काले हैं, और भ्रमर जिस प्रकार एक पुष्प पर बैठता है फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, तब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीला करके मथुरा चले गए हैं। तो इनमें समानता है कृष्ण और भ्रमर में, इसलिए भ्रमर को लक्ष्य करके श्रीमती राधारानी ने कई बात कही है उद्धव जी को सुना करके, वो जो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है और इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी आता है। तो यहां पर श्रीमती राधारानी कह रही है कि ब्रज के जो लोग हैं जो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट थे, और भगवान कृष्ण की माता और पिता आत्मीय स्वजन ये सब यद्यपि भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं और भगवान कृष्ण के विरह में ये लोग भी कष्ट भोग करते हैं, पीड़ित होते हैं। तो श्रीमती राधारानी कहती है कि ठीक है, अब कृष्ण मथुरा चले गए हैं और मथुरा की स्त्रियों के प्रति आकृष्ट हुए होंगे, इसलिए हमें भूल गए हैं, तो कम से कम ब्रजवासी जनों का तो स्मरण करना चाहिए उनको, जो ब्रजवासी जन उनके इतने प्रिय हैं और उनके विरह में ये लोग इतने कष्ट भोग कर रहे हैं, और विशेष रूप से उनकी माता और पिता आत्मीय स्वजन उनको भी भगवान कृष्ण भूल गए, कहकर गए कि तुरंत लौट आएंगे और अभी तक नहीं आ रहे, तो हम लोगों का स्मरण वो नहीं करते हैं, ठीक है, कम से कम तो पिता माता का स्मरण करना चाहिए, ब्रजवासियों का स्मरण करना चाहिए, अपने आत्मीय स्वजन का स्मरण करना चाहिए, किंतु कृष्ण उनको भी भूल गए हैं, हमें तो भूल गए ठीक है, उनको भी भूल गए हैं, माता पिता को भी भूल गए हैं, आत्मीय स्वजन को भूल गए हैं। विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्हें तुम्हार नहीं दोषाभास। जब श्रीमती राधारानी इस प्रकार कृष्ण के ऊपर आक्षेप करती है कि आप भूल गए हैं, हमको तो भूल गए हैं और अपने माता पिता और ब्रजवासियों को भूल गए हैं, पहले तो आक्षेप करके ऐसा बोल दिया श्रीमती राधारानी, अब सोच रही है कि उद्धव जाकर कृष्ण को ये बात कहेंगे कि राधारानी ऐसे आक्षेप कर रही थी, तो कृष्ण यदि क्रोधित होकर अभी हम लोगों की जो आशा बनी हुई है कि कृष्ण एक दिन लौट करके ब्रज में आएंगे, और कृष्ण यदि क्रोधित हो जाएंगे फिर ब्रज में आने का जो मन बनाया होगा उसको त्याग देंगे, तो तुरंत राधारानी को ये स्मरण हुआ है, तो वो कहती है, तो फिर अब कृष्ण की प्रशंसा करती है उनको मनाने के लिए, तो कहते हैं आप विदग्ध हैं, अर्थात आपके प्रेमी भक्तों के हृदय को आप जानते हैं और मृदु हैं, आप बहुत कोमल स्वभाव के हैं, कृष्ण कह रहे हैं, और आप में सारे सद्गुण भी हैं। जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में, सारे सद्गुणों के आगार हैं कृष्ण, गुणों के सागर हैं। सुशील और उत्तम व्यवहार संपन्न है, शील स्वभाव है भगवान कृष्ण का। स्निग्ध करुण और बहुत सुंदर कोमल व्यवहार है कृष्ण का, और दयावान है, दुखी पर दया करते हैं, इसलिए उनको दीन बंधु कहा जाता है, इसलिए करुणामय है। श्रीमती राधारानी कहते हैं कि आप में इतने सारे सद्गुण हैं, इसलिए मैं सोचती हूं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तबे जे तुम्हार मन नहीं स्मरे ब्रज जन से हमार दुर्दैव विलास। किंतु फिर भी आपका मन, आप में इतने सारे सद्गुण हैं, आप अपने प्रेमी भक्तों को कभी भूल नहीं सकते, इतने सारे सद्गुण होते हुए फिर भी आप भूल रहे हैं हम लोगों को, इससे मैं तो यही सोचती हूं कि आप हमें तो भूल रहे हैं और ब्रजजनों को भी भूल रहे हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम सोचते हैं कि इसमें हमारे भाग्य का दोष है, कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि आपकी कृपा हम लोगों पर नहीं होती या ब्रजजनों पर नहीं होती, ये हमारे भाग्य का दोष है, आपको दोष देकर लाभ क्या है। नागणी आपण दुख देखी ब्रजेश्वरी मुख ब्रजेजनेर हृदय बिदरे। तो श्रीमती राधा रानी अब अपने दुख का वर्णन नहीं कर रही, कहती है कि मेरे दुख को तो मैं दुख के समान नहीं मानती, आपके विरह में मुझे जो दुख प्राप्त हुआ है इसको मैं दुख नहीं मानती, किंतु जब मैं ब्रजेश्वरी के मुख की ओर देखती हूं, ब्रजेश्वरी अर्थात माता यशोदा, तो माता यशोदा के मुख की ओर देखती हूं तो उस समय क्या होता है, ब्रजेजनेर हृदय बिदरे। ब्रजेश्वरी माता यशोदा के मुख मंडल को देखकर केवल मैं नहीं सारे ब्रजजनों का ब्रजवासियों का हृदय विदारित होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के विरह में जब से भगवान कृष्ण मथुरा चले गए तब से श्रीमती यशोदा देवी खाना पीना त्याग दिया था और नित्य निरंतर नेत्रों से अश्रु का विसर्जन कर रही थी माता यशोदा, रो रही थी दिन रात और पड़ी रहती थी, घर पर कोई आता है जाता है किसी का ध्यान नहीं था, उद्धव जी आए फिर भी उनका ध्यान नहीं गया उद्धव जी की। जैसे कोई माता पिता होते हैं पुत्र पास में नहीं है दूर में है, पुत्र के पास से कोई व्यक्ति आया हो तो माता पिता में आग्रह होता है कि उस व्यक्ति से अपने पुत्र के बारे में कुछ संदेश प्राप्त करें। तो उद्धव जी आए मथुरा से तो माता यशोदा में संदेश प्राप्त करने के लिए कृष्ण के संबंध में कोई आग्रह नहीं था, इसलिए नहीं था कि माता यशोदा तो एकमात्र चाहती थी कृष्ण को अपने पास, वो संदेश से उनका कोई ये नहीं था, आग्रह नहीं था, संदेश से उनको क्या लाभ मिलेगा, समाचार प्राप्त करने से उनको क्या लाभ मिलेगा, उनको कृष्ण चाहिए, कृष्ण के अतिरिक्त माता यशोदा और किसी में संतुष्ट नहीं, इसलिए वो छाया पर लेटी रहती थी, खाना पीना छोड़कर केवल कृष्ण का स्मरण करती हुई अश्रु विसर्जन कर रही थी दिन रात, ऐसे लगता था जैसे पावस ऋतु वर्षा ऋतु माता यशोदा के नेत्र में बसा हुआ है, निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही। तो श्रीमती राधारानी माता यशोदा के इस दुख का स्मरण करती हुई कहती है कि माता यशोदा के मुख मंडल का दर्शन करने से ब्रजवासियों का हृदय विदारित हो जाता है, कोई देख नहीं सकता माता यशोदा के मुख मंडल को, वो इतने कष्ट में है दुख में है कृष्ण के विरह में, तो सारे ब्रजवासी माता यशोदा को देखकर दुखी हो जाते हैं, तो अपना दुख को भूल जाते हैं, तो मैं अपने दुख के बारे में क्या कहूं, माता यशोदा के दुख को देखकर हमसे सहा नहीं जाता। किबा मार ब्रजवासी किबा जियाओ ब्रजवासी केना जियाओ दुख सहाय बार। तो श्रीमती राधारानी कहते हैं कि आप इस प्रकार मथुरा में रहकर सारे ब्रजवासियों को आपके विरह दुख में दुखी करके आप क्यों मार रहे हैं ब्रजवासियों को? कोई ब्रजवासी आपके विरह में जीवन धारण नहीं करेगा। आप ब्रजवासियों के प्राण हैं, आपके बिना प्राण धारण करना ब्रजवासियों के लिए संभव नहीं। किबा जियाओ ब्रजवासी, केना जियाओ दुख सहाय। और अभी तक ब्रजवासीगण जीवित हैं, आपके विरह में उन लोगों को जीवित नहीं रहना चाहिए, किंतु अभी तक जीवित है। तो ऐसा लगता है कि आपने ब्रजवासियों को जीवित रखा है आपके इस विरह दुख को सहन करने के लिए, कष्ट सहन करने के लिए। तो वस्तुतः ब्रजवासी लोग क्यों जीवित थे जबकि कृष्ण के विरह में उनको प्राण त्याग देना चाहिए था, फिर भी वो क्यों जीवित थे? इसी आशा से कि कृष्ण जब बोलकर गए हैं कि वो ब्रज में आएंगे, यद्यपि तुरंत नहीं आए हैं, कम से कम ब्रजवासियों में ये आशा बनी रही कि कृष्ण एक दिन अवश्य ब्रज में आएंगे, और इसी आशा से ब्रजवासी लोग जीवित थे। क्योंकि यदि वो प्राण त्याग देते और कृष्ण ब्रज में आते और देखते सारे ब्रजवासी प्राण त्याग चुके हैं, तो कृष्ण की अवस्था क्या होगी? इसी बात को सोचकर ब्रजवासी लोग प्राण त्याग नहीं कर पाए कि हम जब प्राण त्याग देंगे, कृष्ण आएंगे, देखेंगे हम सब प्राण त्याग कर चुके हैं, तो कृष्ण की अवस्था क्या होगी? कृष्ण भी प्राण त्याग देंगे, और ब्रजवासी लोग ये नहीं चाहते थे। इसलिए कृष्ण की प्रतीक्षा में कष्ट सहन करते हुए ब्रजवासी लोग प्राण धारण किए हुए। तो आज तुम्हारा समय हो गया है, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधा श्याम सुंदर की, जय श्री गौर निताय की, जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरी।